नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 की टीमें तय। महिला क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 143 रन के विशाल स्कोर से हराया। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 71वें स्थान पर पहुंचे। और यूरो फुटबॉल कप में आज इंग्लैंड ने सर्बिया को और रोमानिया ने यूक्रेन को पराजित किया। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 की टीमें तय हो गई हैं। पहले ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में अमरीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हैं। सुपर 8 का पहला मुकाबला 19 जून को अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से 20 जून को होगा। सभी मैच वेस्टइंडीज में होंगे। दोनों ग्रुप में शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। टीमों को सुपर 8 में तीन तीन मैच खेलने हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो जीत की जरूरत होगी। सेमीफाइनल नॉकआउट रहेगा, यहां हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा, जबकि विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी जो 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। और इस बीच ग्रुप चरण में आज न्यूजीलैंड और पापुआ न्यूगिनी के बीच मुकाबला बारिश के कारण बाधित हो गया है। इससे पहले श्रीलंका ने आज नीदरलैंड्स को 83 रन से हराकर प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की। वहीं एक अन्य मैच में बांग्लादेश नेपाल को 21 रन से हराकर सुपर 8 में पहुंच गया। ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच कल सुबह 6 बजे होगा, यह भारतीय समय अनुसार है, और इस मैच के नतीजे सुपर 8 की टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनोज जी, आज बांग्लादेश के नेपाल से मैच जीतने के साथ ही सुपर 8 की टीमें तय हो गई।
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि अब भारत को अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से, और फिर चिर प्रतीक्षित मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी। हालांकि ये कहकर मैं कोई बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को छोटा करके नहीं आंक रहा हूं कि दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं, लेकिन इन दोनों टीमों का जब भी भारत के साथ पाला पड़ता है तो भारतीय टीम सवा सिर साबित होती है हमेशा। तो मुझे लगता है हमारी टीम ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि आप जितनी अन्य टीम देखेंगे उनका स्टैंडर्ड इस बार इस T20 वर्ल्ड कप में वैसा नहीं रहा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, उन्होंने पिछले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 कैच छोड़े, फील्डिंग उनकी बहुत खराब रही। साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका नेपाल से बड़ी मुश्किल से जीता है, नीदरलैंड से जो है जीत हासिल करने के लिए उसको पसीने आ जाते हैं। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो हाल हुआ, जो उनको रुखसत होना पड़ा टूर्नामेंट के शुरू से ही, वो किसी से छुपा नहीं है। तो अभी तक मैं समझता हूं नजर नहीं लगनी चाहिए, ये सिलसिला आगे बढ़ते रहना चाहिए।
ये जो बारबाडोस में जो मैच होना है सुपर 8 का पहला मुकाबला, तो ये जो है ये यहां जो टूर्नामेंट में स्पिन और पेस दोनों तरह के गेंदबाज हावी रहे हैं और भारत ने यहां दो T20 खेले हैं और एक में भी टीम को जीत नहीं मिली। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी T20 मैच नहीं हारा है भारत।
बिल्कुल, और अफगानिस्तान की टीम अब थोड़ी बदली हुई फिजा है, क्योंकि अभी ब्रायन लारा ने पीछे भविष्यवाणी की थी कि यह टीम सेमीफाइनल में पहुंच रही है, तो यह चौंकाने वाला तथ्य था,
क्योंकि कई बड़े उलटफेर हुए हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम ने न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हराया,
दिग्गज टीम को हराया, न्यूजीलैंड को, जैसा कि आपने बताया। और उससे पहले वनडे का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब उन्होंने पिछली चैंपियन इंग्लैंड को हराकर सनसनी फैला दी थी, पाकिस्तान को हराया, कई दिग्गज टीमों को हराया। अब तो अफगानिस्तान को अगर यह कहा जाए कि आप उलटफेर करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं उलटफेर नहीं है, ये तो हमारी स्वाभाविक चीज है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था अफगानिस्तान जो है स्पिन बॉलिंग की फनकार है, लेकिन अब उनके पास जो फारूकी हैं और नवीन हैं, दोनों बहुत ही उम्दा जो है फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उनके गुरबाज को देखें आप, उनकी जो सलामी जोड़ी है वो बहुत ही शानदार है।
मतलब सुपर 8 में देखिए तो ना न्यूजीलैंड बना पाई जगह, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी जो पूर्व चैंपियंस थी कोई भी जगह नहीं बना पाई,
कोई जगह नहीं बना पाई। और इसके लिए मतलब ये मानना होगा कि अगर आपकी टीम बैलेंस नहीं है, अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो मध्यक्रम इतना खराब है कि एक छोटी सी अदना सी चीज, अदना सी जो टीम मानी जाती है आयरलैंड, हालांकि किसी को हल्का नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले, जैसे आपने पूर्व चैंपियन कहा उसको, 2009 की पूर्व चैंपियन है और कई बार फाइनल में भी पहुंची है, ये टीम जो है 10 रन में अगर 4 विकेट खो दे केवल 17 गेंद के अंतराल में, तो आप इसे क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, ऐसी टीम जीत की हकदार थी भी नहीं।
जी, और अगर आज का दिन से देखिए, क्योंकि नीदरलैंड्स और बांग्लादेश दोनों को सुपर आठ में जाने का एक मौका था, क्योंकि अगर बड़े स्कोर से श्रीलंका को हरा देती नीदरलैंड्स और बांग्लादेश अपना मैच हार जाता तो शायद नीदरलैंड्स के लिए मौका था। और उसके बाद नीदरलैंड्स के जो साइब्रेंट एंगलब्रेच ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी, इतना वो भावुक हो गए और थोड़ा उनको चोट पहुंची इससे।
देखिए, नीदरलैंड की टीम जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रही है। दक्षिण अफ्रीका को भी उसने पिछली बार हराया था और उसी की दम पर पाकिस्तान पहुंचा था अगले राउंड में, और फिर उसके बाद उसका सफर फाइनल में जाकर थमा था। लेकिन ये बांग्लादेश की टीम जो है वाकई बहुत अच्छा खेली है, और क्योंकि उतना ज्यादा रन बेशक ना हो लेकिन गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की रही। और खासतौर पर आप देखेंगे तो इसमें तंजीम हसन साकिब, जिन्हें कोई नहीं जानता था, वो 24 में से 21 गेंदे डॉट गेंदे करते हैं। और उसके अलावा मुस्ताफिजुर रहमान जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, वो 20 गेंदे डॉट बॉल करते हैं, यानी 20 और 21 यानी दो प्लेयर मिलकर 41 डॉट बॉल करते हैं। तो इसी से कितना दबाव आ जाता है, और ऊपर से उन्होंने दोनों ने तीन तीन विकेट भी चटकाए, तो मैच का अंतर तो इन्होंने ही पैदा कर दिया मैं कहूंगा। और दूसरे मैच का जो आपने जिक्र किया उसमें मैं एक ही लाइन कहूंगा कि श्रीलंका ने जो स्लॉग ओवर्स में 77 रन बनाए हैं पांच ओवर के खेल में आखिरी ओवरों में, वो निर्णायक साबित हुए। उसका कोई जोड़ नहीं है और पूरे टूर्नामेंट में मैं कोई ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया आखिरी पांच ओवर में। मैं तो कहूंगा श्रीलंका ने बहुत देर कर दी फॉर्म में आते आते।
और अगर कल के मैच की से आप बात भी कर रहे थे, हम आयरलैंड के साथ मैच हुआ पाकिस्तान का, ग्रुप मुकाबला था, उसमें पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से बेशक हरा दिया लेकिन पसीने छुड़ा दिए।
इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहूंगा कि गेंदबाजी फिर भी अच्छी थी पाकिस्तान की, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने और मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से पावर प्ले में 5 विकेट लेकर एक तरह से मजबूती दी थी अपनी टीम को, बल्लेबाजों ने अपना काम जो है उसको सही तरीके से नहीं निर्वाह कर पाए। एक बाबर आजम थे जिनके पास तजुर्बा था, उस तजुर्बे के दम पर वो मैच को आखिर तक ले गए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ले जाते थे, लेकिन धोनी आखिर में चौके छक्के लगाते थे, लेकिन इनको साथ मिला शाहिनशाह अफरीदी का, जिन्होंने 2 छक्के लगाए, और अगर वो 2 छक्के ना लगते तो कुछ भी हो सकता था।
तो रुख बदल दिया आखिरी 18वें 19वें ओवर के दौरान। और अब महिला क्रिकेट की बात करते हैं। भारत ने कल पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 143 रन के विशाल स्कोर से हरा दिया। बेंगलुरु में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की 127 गेंदों की में 117 रन की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 8 विकेट पर 265 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 37 और पूजा वस्त्रकर ने 31 रन बनाकर अहम योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए तेज गेंदबाज खाका ने 3 जबकि मसाबाता क्लास ने 2 विकेट लिए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 38वें ओवर में 122 रन पर ही सिमट की। कल अगर देखा जाए, स्मृति मंधाना ने उप कप्तान है और वाकई में जो अपना कहते हैं ना कि जो उप कप्तानी उनको सौंपी गई है वो उन्होंने प्रूव कर दिया।
जी बिल्कुल, क्योंकि अब काफी दिनों के बाद ये T20 से वनडे में लौटी हैं और वनडे उनका पसंदीदा फॉर्मेट है, और यहां पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो उन्होंने 117 रन की जो ताबड़तोड़ पारी खेली उसमें संयम भी था, बीच बीच में आक्रामकता भी थी, गेंद को मेरिट के हिसाब से उन्होंने तोला, और यही वजह थी कि उनको जो दूसरे छोर पर दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर ने जो साथ दिया उससे काफी काम आसान हो गया, और बाकी का काम जो है आशा शोभना ने 4 विकेट चटकाकर पूरा कर दिया।
और एक बात भी कि स्मृति ने एक दिवसीय मैच में 117 रन बनाने वाली वे पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। और इससे पहले मिताली राज ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक 109 रन की पारी खेली थी। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं। और अगर देखा जाए कल के जो महिला क्रिकेट में, उसमें हमारे गेंदबाजों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। आशा शोभना ने 4 विकेट चटकाए, दीप्ति शर्मा ने 2 लिए और पूजा वस्त्रकर ने, मतलब इन्होंने रन भी अच्छे बनाए और विकेट भी लिए।
जी हाँ बिल्कुल, अगर आप रन अच्छे बनाए विकेट भी आप चटकाते हैं तो अच्छा ऑलराउंड खेल जो कि दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर की तरफ से देखने को मिला, तो और क्या चाहिए आपको। अच्छी शुरुआत हो गई, आपके खिलाड़ियों ने ऑलराउंड खेल दिखाया और मैच को बिल्कुल एक तरफा बना दिया। और एक जो मैच है वो केवल 38 ओवर ही खेलने दिया अपनी अपोनेंट टीम को, तो साउथ अफ्रीका कहीं आसपास भी टिका नहीं, मतलब टिकता हुआ दिखा नहीं कि कहीं कोई वो संघर्ष कर रहा हो या वापसी करके कोई पलटवार कर सके।
एक तरफा मुकाबला हो गया,
एक तरफा हो गया।
और इस बीच आपको बता दें, ताजा जानकारी है कि जो T20 मैच चल रहा है उसके ग्रुप चरण में आज न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिल तक न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में सुधार जारी रखते हुए 71वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वोच्च रैंकिंग है। नागल पिछले सप्ताह 77वें स्थान पर थे। नागल आज इटली के पेरुगिया में एटीपी चैलेंजर में उपविजेता रहने के कारण 6 पायदान आगे बढ़ने में सफल रहे। फाइनल में उन्हें 37वीं वरीयता प्राप्त लुसियानो डाडेरी ने 6-1, 6-2 से हराया। पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स के ड्रॉ में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नागल के अब 777 एटीपी अंक हैं, और देखा जाए तो निरंतर उनका एक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं, और रैंकिंग जब सुधरती है तो एक मनोबल बढ़ता है। आप लगातार टूर्नामेंट्स में जो भाग लेते हैं, क्योंकि किसी भी भारतीय का लगातार टूर्नामेंट्स में भाग लेना इतना आसान नहीं है, कई तरह की परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, आपको अपने संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जितना कुछ आपको सहयोग मिलता है उसके अलावा भी आपको जो है लगातार भाग लेना, अपना स्टेमिना बना के रखना, चोटिल होने से बचना, ये सारी चीजें जो है उसका इनाम मिला है सुमित नागल को।
अब बात यूरो फुटबॉल कप की। यूरो फुटबॉल कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में जूड बेलिंगहम के गोल की मदद से सर्बिया को 1-0 से हराया। रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने वाले बेलिंगहम ने 13वें मिनट में बुकायो साका के क्रॉस पर हेडर से गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित रहा। और आज दूसरे मैच में रोमानिया ने यूक्रेन को 3-0 से पराजित किया। तीसरा मैच बेल्जियम और स्लोवाकिया के बीच होगा। आज देखा जाए तो इंग्लैंड मतलब शुरू से एक ही हालांकि गोल हुआ, दूसरा जब गोल करने लगा तो उसमें सर्बिया के गोलकीपर ने उनका जो हेडर गोल के अंदर जाने नहीं दिया, तो एक शुरू में उन्होंने बढ़त बना ली और आखिर में कोई गोल कर ही नहीं पाया।
बिल्कुल, और अच्छी बात यह लगी मुझे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लैंड का जो है ना इतना गजब का था कि पोजीशन ज्यादा गेंद पर और पासिस ज्यादा, सर्बिया की तुलना में फाउल उन्होंने बहुत कम किए, और जिस तरह से सर्बिया ने 2 येलो कार्ड उनको दिखाए गए, इससे ये जाहिर होता है कि इंग्लैंड बड़े साफ सुथरे खेल में उसने यकीन रखा, मारधाड़पूर्ण खेल से बचा, तो इन सब का उसे एक तरह से पारितोषिक मिला। और एक अपॉर्चुनिस्टिक गोल, जैसा अभी आपने बताया कि बेलिंगहम ने जो क्रॉस पर एक हेडर से गोल किया, बहुत ही अद्भुत गोल था और उस गोल को बार बार देखने का मन करता है।
जी, और आज जो दूसरा जो मैच हुआ रोमानिया यूक्रेन के, आखिरी मोमेंट तक देख रहे थे कि शायद यूक्रेन कोई गोल कर दे, पर इसमें भी एक तरफा मुकाबला रहा और रोमानिया ने जीत दर्ज की।
जी हाँ बिल्कुल, फ्रैंकफर्ट में यह मुकाबला खेला गया था और जिस तरह से रोमानियाई टीम बहुत बैलेंस खेली, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ हमले नहीं बोले उसने, बहुत सुनियोजित हमले बोले, और जितने बोले वो बहुत निर्णायक साबित हुए, तो यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है। तो रोमानिया के बहुत तेजी से बढ़ते हुए कदम हैं, और यूक्रेन जो है वो अब मैं समझता हूं जो कुछ उनके हालात रहे हैं उन हालात से उन्हें अब पार पाना होगा, तभी वो फुटबॉल में सही तरीके से वापसी कर सकते हैं।
और अब आपको कुछ और खेल खबरों की जानकारी दे देते हैं। भारत 2025 में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के कार्यकारी बोर्ड ने इसकी घोषणा की। टूर्नामेंट अगले साल दिसंबर में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें शामिल होंगी। और इसके अलावा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 पावो नूर्मी गेम्स में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का आयोजन कल फिनलैंड के तुर्कू में होगा। चोपड़ा हाल में पिछले 28 मई को चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट में नहीं उतरे थे, क्योंकि वह हल्की चोट से उबर रहे थे ताकि ओलंपिक वर्ष में उनकी चोट और ज्यादा न बढ़े। देखा जाए तो अगर हमने जिस गेम्स की बात की है, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर जो कल है, उसमें 2022 में जब ये हुआ था तो उसमें उपविजेता रहे थे और बहुत कम कह सकते मार्जिन से हार गए थे।
जी बिल्कुल, अब तो फिनलैंड, जैसा कि आपने बताया, फिनलैंड तो उनका दूसरा होम ग्राउंड है, क्योंकि लंबा समय उनका वहां बीता है नीरज चोपड़ा का, और जब कंडीशंस आपके अनुकूल होती हैं तो आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है जब कभी गीला ट्रैक भी मिल जाए, विपरीत परिस्थितियां हो, वहां पर भी ये अपना संतुलन जो है मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए बहुत सहजता के साथ जीत हासिल करते हैं। मुझे लगता है कि आप भी अपने उस रजत पदक को स्वर्ण पदक में जरूर बदलेंगे।
जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं क्योंकि समय कह रहा है अनुमति ली जाए। तो मनोज जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।